हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है यहाँ श्री जगन्नाथ मंदिर में। महाभारत की कथा पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग कर रहे हैं। पिछली चर्चा द्रौपदी के विवाह की। क्या द्रौपदी का विवाह, एक स्त्री का विवाह पांच पुरुषों से शास्त्र सम्मत है या नहीं? क्या कोई ऐसे उदाहरण है शास्त्र में जिनके आधार पर इसको सही साबित किया जा सकता है? और फिर द्रौपदी पांच पतियों की पत्नी होते हुए भी सती कहलाती है, सती स्त्रियों में उनकी गणना होती है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं? समाज में तो इसको ठीक नहीं माना जाता, आज ही नहीं उस समय भी स्वयं महाराज द्रुपद ने इसको अधर्म माना था। पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब द्रुपद महाराज को ये बात पता चली कि पांचों मेरी पुत्री से विवाह करने वाले हैं, तो वे बड़े अचंभित हो गए, दुविधा में पड़ गए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, ये तो धर्म नहीं है, हमने कभी ये सुना नहीं, ऐसा कभी हुआ हो। हाँ, एक राजा कई स्त्रियों को रखता है, उसकी कई रानियां होती हैं, इसके कई प्रमाण हैं, लेकिन एक स्त्री कई पुरुषों को रखे ये तो ठीक नहीं है। धृष्टद्युम्न ने भी यही कहा, पिछली बार चर्चा हम लोगों ने की थी इस पर। और अब व्यास देव वहां पर आए। आपको स्मरण होगा पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अगर मेरे मन में ये बात आई है, मेरे मुख से ये बात निकली है, तो वो धर्म है। ये कोई अहंकार नहीं था युधिष्ठिर महाराज का, गर्व से नहीं उन्होंने कहा था, उनको विश्वास था, उनके धर्म का बल इतना था कि वो जानते थे कि उनके मन में कोई अधर्म की बात आ नहीं सकती। लेकिन फिर भी द्रुपद महाराज की संतुष्टि के लिए युधिष्ठिर महाराज ने शास्त्र से प्रमाण दिए, क्योंकि उन्होंने पूछा था, ऐसा तो कभी हमने नहीं सुना, ये जो आप बात कर रहे हैं तो अधर्म है, तो उन्होंने शास्त्र से प्रमाण दिए। दो प्रमाण दिए युधिष्ठिर महाराज ने, एक दिया एक स्त्री जिसका नाम था जटिला, गौतम ऋषि के वंश में ये आई, और जटिला ने सप्त ऋषियों से विवाह किया, सात ऋषियों से जो सप्त ऋषि हैं उनसे विवाह किया। युधिष्ठिर महाराज ने प्रमाण दिया कि उसने सात से विवाह किया। फिर दूसरा प्रमाण दिया उन्होंने, ये प्रमाण भागवत में भी है, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है कि कंडु मुनि की पुत्री, इनका विवाह प्रचेताओं से हुआ, जो दस भाई थे प्रचेता, एक साथ तपस्या करने गए थे, जल के भीतर रहकर एक साथ उन्होंने तपस्या की, भगवान की कृपा हुई, भगवान ने दर्शन दिए, उनको आशीर्वाद दिया रचेताओं को, और फिर जब वे बाहर आए तपस्या पूरी करके, तो उन्होंने एक कन्या से, कंडु मुनि की पुत्री एक कन्या से दसों पुत्रों ने विवाह किया भगवान के आदेशानुसार। तो युधिष्ठिर महाराज ने दो प्रमाण दिए कि ये शास्त्रों में है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ। अब युधिष्ठिर महाराज शास्त्रों का प्रमाण क्यों दे रहे थे? बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने कुछ समय पहले कहा था कि मेरे मन में जो आया है वो धर्म है, मेरे मुख से जो निकला वो धर्म है, अधर्म हो ही नहीं सकता। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि आगे आने वाली पीढ़ियां, आगे आने वाले लोग कलियुग इत्यादि में धर्म में इतने दृढ़ ना होते हुए भी इस बात की नकल कर सकते हैं, इस बात को प्रमाण दे सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि युधिष्ठिर के मन में आया था तो युधिष्ठिर ने उसको धर्म माना, जबकि सभी लोग अधर्म कह रहे थे, इसीलिए मेरे मन में जो आएगा वही धर्म है। इस प्रश्न का, इस विवाद का खंडन करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने शास्त्र से प्रमाण दिए कि केवल ये नहीं कि मेरे मन में आया, शास्त्र में भी इसका प्रमाण है। तो इसीलिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है इसको समझना चाहिए। केवल मन में कोई बात आ जाए, भले ही हम अच्छा जीवन जी रहे हो, तो क्या वो धर्म हो सकता है? नहीं। धर्म वो है जो एक अधिकारी के द्वारा स्थापित किया जाए, अधिकारी के द्वारा अनुमोदित किया जाए और शास्त्रों में उसका प्रमाण हो, तब वो धर्म हो सकता है। अपने मन में आई हुई बात, केवल कोई भी बात, जरूरी नहीं है कि धर्म हो। आप में से बहुत लोगों ने एक घटना सुनी होगी, कई वर्ष पहले बंबई में ऐसा होता था कि जो लोग सड़कों पर सोते थे, बंबई में आज भी बहुत लोग सड़कों पर सोते हैं, उनको स्थान नहीं है सोने के लिए। तो ऐसा हुआ था कि जो लोग सड़कों पर सोया करते थे उनकी एक व्यक्ति हत्या कर रहा था। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति मरा हुआ पाया जाता था, कोई भी, ऐसे नहीं कि उसका कोई एक ही संबंधी है, नहीं। तो ऐसे मर रहे थे, पत्थर मार कर मार देता था, कैसे मार देता था, रात में सोते हुए उनको मार देता था। बहुत परेशानी हुई, पुलिस वाले परेशान थे, कौन है, क्या हो रहा है, कोई पागल है या कैसा है, बहुत विचित्र बातें होने लगी। फिर कुछ समय बाद वो पकड़ा गया, और जब पकड़ा गया तो पुलिस वालों ने उससे पूछा कि भाई तुम ये क्यों करते थे, क्या कारण था ऐसे लोगों को सड़क पर जो सो रहे जाकर मार देना, कोई तुम्हारा द्वेष था, कोई वैर था, कोई तुमको प्राप्त होता था, कोई चोरी नहीं करता था, कोई पैसा नहीं लेता था, सड़क पर सोने वालों के पास वैसे भी कौन सा पैसा होता है जो वो चोरी करे। तो पुलिस वालों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे हृदय से भगवान मुझे प्रेरणा देते थे लोगों को मारने के लिए, इसीलिए मैं मार देता था। तो हमारे मन में आई हुई चीज को धर्म मान लेने से ये होता है, उत्पाद होता है। तो इसीलिए धर्म क्या है इसको समझना चाहिए। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान ने बनाया, बस उसे धर्म कहते हैं। इस बच्चे को थोड़ा बिठा दीजिए कहीं पर, ये वॉकिंग कर रहा है, यहाँ पर हम सबका ध्यान इसके ऊपर जा रहा है। तो धर्म क्या है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान ने बनाया। अब वो जो भगवान ने बनाया वो हमें कैसे पता चले? भगवान तो हमें आकर नहीं बताते हैं, तो फिर कैसे पता चले? इसीलिए कहा गया है धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनुयेन गतः स पंथा, कि धर्म के जो तत्व हैं वो छुपे हुए हैं। निहितम गुहाय, गुहा यानी गुफा, तो धर्म के तत्व एक गुफा में छुपे हुए हैं। और कैसे पता चलेंगे? महाजनुयेन गतः स पंथा, कहां है वो गुफा? भक्तों का हृदय। तो भक्तों के हृदय से धर्म के सिद्धांत प्रकट होते हैं, भक्तों के हृदय से भगवान प्रकट होते हैं। कृष्ण लीला में इसका प्रमाण है, भागवत में वर्णन किया गया है कि जब श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे तो सबसे पहले वो वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए, सीधे देवकी के गर्भ में प्रकट नहीं हुए थे, पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए। वसुदेव महान भक्त हैं भगवान के। तो पहले भगवान भक्त के हृदय में प्रकट हुए और फिर उनके हृदय से देवकी के हृदय में और फिर देवकी के गर्भ में, ऐसा वर्णन भागवत करता है। इसीलिए हमें अपने मन से, मन में आई हुई सभी बातों को धर्म नहीं मानना चाहिए। हमारा मन न तो इतना शुद्ध है, ना ही हम ऐसे स्तर पर हैं जहां पर हम जो भी सोचे वो धर्म हो। इसीलिए महाजनों ये नहीं बता सकता, एक अधिकारी चाहिए, एक भक्त चाहिए धर्म के सिद्धांत समझाने के लिए। कृष्ण की कथा भी भक्तों के मुख से सुननी चाहिए। ये एक बड़ा विरोधाभास वक्तव्य है कि भगवान की कथा अगर कोई भक्त नहीं हो तो उसके मुख से नहीं सुननी चाहिए। प्रश्न आता है कि भगवान की कथा तो शुद्ध है, भगवान की कथा में क्या अशुद्धता हो सकती है? भगवान का नाम शुद्ध है, केवल नाम सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, जीव मुक्त हो जाता है, तो फिर किसी के भी मुख से सुने तो वो कथा कैसे हमारा नुकसान कर सकती है? हम भक्त के मुख से सुने, अभक्त के मुख से सुने, एक पापी के मुख से सुने, कैसे वो नुकसान दे सकती है? वो तो कृष्ण कथा है। श्रील प्रभुपाद शास्त्रों का उदाहरण देकर समझाते हैं कि भगवान की कथा शुद्ध निर्मल दूध के समान है, उसमें कोई मल नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन जब वही दूध एक सर्प के द्वारा छू लिया जाता है, उसमें जहर आ जाता है। दिखने में वही दूध है, शुद्ध है, निर्मल है, लेकिन क्योंकि सर्प ने स्पर्श किया तो वो मृत्यु का कारण बनता है। इसी तरह कृष्ण कथा निर्मल है, शुद्ध है, लेकिन जब कोई भक्त नहीं होता, भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान के नियमों में नहीं चलता, भगवान के द्वारा बनाई गई परंपरा में नहीं होता, तो जब वो भक्त कृष्ण कथा को कहता है तो उसमें दूषण हो जाता है। कैसे? इसका उदाहरण देते हैं आपको। एक बार एक व्यक्ति कृष्ण कथा कह रहे हैं, भागवत पर कथा कह रहे हैं, और कहते कहते वो गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाओं पर आते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा और प्रार्थना कहते हुए कहते हैं कि सारे भागवत में ये गजेंद्र मोक्ष की जो प्रार्थनाएं हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अब ये जो कह रहे हैं कथा, ये कथा कहने वाले ये भगवान के रूप को नहीं मानते हैं। भागवत की कथा कह रहे हैं, कृष्ण की कथा कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जो भगवान है उनका कोई रूप नहीं होता। ये जो अलग अलग रूप है ये भगवान नहीं है, सच्चे भगवान तो कोई रूप नहीं है, निराकार निर्गुण ब्रह्म है। तो अब ये कथा कह रहे हैं और कहते कहते ये कहते हैं कि गजेंद्र मोक्ष की जो गजेंद्र की प्रार्थना है सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसमें किसी एक विशेष रूप का नाम नहीं लिया गया। उसने कृष्ण को, विष्णु को, राम को संबोधित नहीं किया, इसीलिए श्रेष्ठ हैं। अर्थात वो स्थापित करना चाह रहे हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, अगर कृष्ण राम का नाम ले लिया जाए तो वो श्रेष्ठ नहीं होती प्रार्थना। तो देखिए कह रहे हैं भागवत कथा, लेकिन जब उसको कहते हैं उनके मुख से निकलकर वो विष हो जाता है और भक्ति मार्ग में मृत्यु का कारण बनता है। इसीलिए हमें कथा भक्तों से सुननी चाहिए, ज्ञान भक्तों से लेना चाहिए, सिद्धांत भक्तों से समझने चाहिए, भक्ति भक्तों से ग्रहण करनी चाहिए। भक्ति का एक ही मार्ग है। अगर हम भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बल पर भक्ति नहीं मिल सकती, ये बड़ा स्पष्ट है, शास्त्रों का प्रमाण है, आचार्यों की टीका। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पारो तो मारे शकतिया छे। कृष्ण भक्तों की संपत्ति है, ये स्वयं कृष्ण कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि भक्तों से ज्ञान लो, भक्तों से मुझे प्राप्त करो। ये जो मनुष्य शरीर मिला है, हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बहुत सुंदर श्लोक कहा गया भागवत में 11वें स्कंद में। ये जो शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, ये क्या है? ये एक बहुत सुंदर नाम है। भागवत कहता है मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकुलेन नभस्वतेरितं पुमान भवाद्भि न तरेत स आत्मः। मृदेहम, ये जो मनुष्य देह है बहुत मुश्किल से मिलता है। सुलभम सुदुर्लभम, सुलभम मतलब 84 लाख योनियों में घूमते 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 अपने आप प्राप्त हो जाता है, लेकिन बड़ा दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत अच्छी नाव की तरह है। प्लवम सुकल्पम, बड़ी अच्छी तरह बनी हुई नाव है, बड़ी मजबूत नाव है। प्लवम सुकल्पम, और इस नाव का कप्तान कौन है? इस नाव का कर्णधार कौन है? इसको चलाने वाला, इसको दिशा दिखाने वाला, जब ये इधर उधर हो जाए तो उसको ठीक से मार्ग पर चलाने वाला गुरु कर्णधार, वो गुरु है। तो जब हमारे जीवन में हम अपने जीवन को एक नाव की तरह मानते हैं और गुरु के हाथ में सौंप देते हैं, तो गुरु है जो नाव को सीधे कृष्ण की ओर ले जाते हैं, और हमारी भक्ति की नाव सदैव इधर उधर जाती रहती है। क्योंकि ये जो भवसागर है, ये जो समुद्र है, ये शांत नहीं होता, बहुत सारे ऊपर नीचे लहरें आती हैं। तो हो सकता है भक्ति में इधर उधर चले जाएं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन में बहुत से आकर्षण हैं जो भक्ति से हमें दूर खींच लेते हैं, और इन आकर्षणों के चलते जैसे समुद्र में व्यक्ति लहरों में ऊपर नीचे होता है, ऐसे ही आकर्षणों से कभी हम लोग खींचते हैं, कभी अपने आप को बाहर लाते हैं। लेकिन अगर एक गुरु के हाथ में अपने इस शरीर की, अपने इस जीवन की नाव को सौंपी है, सौंप दिया है, तो फिर गुरु कर्णधारम, गुरु उनको लेकर जाते हैं सीधे कृष्ण की ओर। लेकिन हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि नाव को चलने के लिए केवल एक दक्ष कप्तान तो ठीक है, अच्छी हवाएं भी चाहिए ताकि वो बड़े आराम से ले जा सके। तो ऐसी नभस, ऐसी अनुकूल हवाएं मैंने शास्त्रों के रूप में दी है। मयानुकूलेन नभस वतेरितम, जो शास्त्र हैं ये बहुत अनुकूल हवाएं हैं जो हमारे इस जीवन की नाव को गुरु के अधीन रहते हुए सीधे कृष्ण की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन एक चेतावनी भी देते हैं, पुमान भवाद भी, इन सब के होते हुए शास्त्र है, गुरु है, भक्ति का मार्ग है, मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन अगर मनुष्य जीवन में हम केवल खाना पीना सोना केवल इसी में पड़े हैं, पुमान भवाद भी न करे, अगर मनुष्य जीवन मिलकर भी हम भक्ति करके इस समुद्र को, इस सागर को, भव सागर को पार करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अर्थात इन इन भोग करने की प्रवृत्ति, आनंद लेने की प्रवृत्ति, केवल इस जगत में बने रहने की प्रवृत्ति, मान प्रतिष्ठा पाने का, पाने की इच्छा, कुछ प्राप्त कर लेने का, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की इच्छा, अगर हम इसी में फंसे हुए हैं, न डरे, इसके ऊपर नहीं निकलते हैं, हर समय हर क्षण द्वेष क्रोध लोभ मोह बस यही हमारे दिल में है, और ये हम सबके हृदय में है, कोई नहीं कह सकता कि मैं मुक्त हूं। हम द्वेष करते हैं, हमारे हृदय में लोभ है, काम वासनाएं, हम सोचते हैं कि इस जगत में मैं सुखी रह सकता हूं, भूल जाते हैं कि ये जगत दुखालय है, कष्ट है, इसमें सुख हो ही नहीं सकता, झूठा सुख है, केवल दिखावा है। और इस सब का सबको अनुभव है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम फिर भी वही कार्य करते हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस जगत में कुछ धन पाकर बहुत सुखी हो गया? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस जगत में कुछ कोई सुंदर स्त्री से विवाह करकर सुखी हो गया? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मान प्रतिष्ठा पद पाकर बहुत सुखी हो गया? कोई नहीं, एक उदाहरण नहीं है। लेकिन हम सब ये देखते हैं, हम सब ये जानते हैं, फिर भी वही करते हैं। ये आश्चर्य, ये माया बड़ी विचित्र है। हम सुनते हैं, हम देखते हैं, इसीलिए परीक्षित महाराज ने बहुत सुंदर प्रश्न किया था कि व्यक्ति पाप क्यों करता है। अरे वो जानता है, शास्त्रों से सुन लेता है पाप नहीं करना चाहिए, देखता है कि पाप करने वाले को दंड मिलता है, कितना कष्ट होता है उसके जीवन में, लेकिन फिर भी पाप करता है। बड़े आश्चर्य, इसलिए धर्म को समझना एक अधिकारी के अधीन रहकर, एक अधिकारी के हृदय के से प्रकट हुए सिद्धांतों को, महाजनों ये न गता सकल था, भक्ति का मार्ग यही है। इसका प्रमाण आप सब लोग अपने जीवन में देख सकते हैं। हमें भक्ति में आने के लिए प्रेरणा किसने दी? किसी एक भक्त ने मार्ग दिखला दिया, आइए मंदिर में जप कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए, मार्ग दिखला दिए। हम बने हुए हैं भक्ति में एक भक्त की कृपा से, और हमें पूर्णता प्राप्त होगी भक्ति में, कृष्ण प्राप्त होंगे एक भक्त की कृपा से। भक्ति में इस एक सिद्धांत को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम भक्ति में आते हैं, भक्ति में बने रहते हैं, और भक्ति की पूर्णता को प्राप्त करते हैं केवल भक्त की कृपा से, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अपने बल पर नहीं कर सकते। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़ी है, कोई भरोसा नहीं है निज बल, अपने बल पर, केवल आपके चरणों में मैंने आश्रय लिया। तो इसीलिए इस सिद्धांत को समझाने के लिए युधिष्ठिर महाराज शास्त्रों से प्रमाण देते हैं। लेकिन इसको सुनकर भी द्रुपद महाराज संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि ये बड़ी विचित्र बात, पहली बार वो सुन रहे थे, राजा हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं सोचा था, मेरी पुत्री अर्जुन से विवाह करेगी, लेकिन यहां अचानक पांचों से विवाह। तो उस समय व्यास थे, द्रुपद महाराज को एक और जगह ले गए, उन्होंने कहा आइए आपको एकांत में ले जाता हूं। और एकांत में क्यों ले गए, सबके सामने क्यों नहीं कहा? क्योंकि दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले थे। तो एकांत में ले गए और उन्होंने इतिहास सुनाया, ये पांडव कौन है और ये द्रौपदी कौन है, इनका इतिहास सुनिए द्रुपद महाराज। तो उन्होंने इतिहास बताया कि एक समय नैमिषारण्य में यज्ञ हो रहा था, और यमराज ने यज्ञ की दीक्षा ली, यमराज की भी इच्छा हुई यज्ञ करने की। और नियम ऐसा होता है कि जब यज्ञ किया जाता है और जो व्यक्ति यज्ञ की दीक्षा ले लेता, अर्थात यज्ञ करने की, वो यज्ञ समाप्त होने से पहले उठ नहीं सकता, उसको हिलना नहीं चाहिए। अलग अलग दीक्षाएं होती हैं, जैसे जब विश्वामित्र मुनि भी यज्ञ कर रहे थे, रामचंद्र जी को लेकर गए थे, तो उन्होंने दीक्षा ली थी यज्ञ की, तो असुर आते थे, मारीचा आते, सुबाहु आते, वो उसको खराब करते यज्ञ को, लेकिन उस समय विश्वामित्र मुनि हिलते नहीं थे। तो यमराज ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, अब वो यज्ञ कर रहे हैं नैमिषारण्य में बैठकर, और उधर उनका सारा डिपार्टमेंट बंद हो गया है, वो उनका विभाग बंद हो गया क्योंकि यमराज नहीं है, तो कोई मर नहीं रहा था पृथ्वी पर, सब लोग अमर हो गए, तो कोई मृत्यु नहीं। कितना अच्छा है ना। हम लोग तो प्रार्थना करेंगे यमराज जी आप जीवन हमारे करते रहिए, यज्ञ करते रहिए, अच्छा है। तो सारे देवता परेशान हो गए, ये क्या हुआ। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा आप लोगों को क्या चिंता है, आप क्यों मनुष्यों से डर रहे हैं। तुमने कहा वो मनुष्य हमारे समान हो गए हैं, वो भी अमर हो रहे हैं, मर ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, थोड़े समय की बात है, यमराज अभी यज्ञ कर रहे, जैसे ही वापस आएंगे सब मर जाएंगे, चिंता नहीं करना। तो वापस चले गए, यज्ञ शुरू हो रहा था, यज्ञ चल रहा था, तो देवता गंगा के तट पर थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक सोने का कमल तैरता हुआ आ रहा है। बड़ा आश्चर्य की बात, अरे सोने का कमल। खैर वो लोग देवता थे इसीलिए इतना आकर्षित नहीं हुए, अगर हम लोग होते थे तो झगड़ा हो जाता सब में, कौन लेगा पहले, सोने का रेट भी आजकल बहुत ज्यादा है। तो इंद्र ने सोचा कि कहां से आ रहा है, इसको देखना चाहिए। तो इंद्र चले गए गंगा के उद्गम की ओर, गंगोत्री, देखने के लिए कि कहां से आ रहा है। तो जब पहुंचते पहुंचते गंगोत्री के पास पहुंचे तो देखा कि बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है और वो रो रही है, और जब उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं तो एक आंसू उसकी गंगा में गिरता है, उसका कमल बन जाता है। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ, कभी देखा नहीं था ऐसा, ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इंद्र ने पूछा कौन हो आप, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तो उसने कहा अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पीछे पीछे आइए। तो इंद्र चले गए पीछे पीछे, एक स्थान पर गए तो देखा वहां पर एक बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रभावशाली एक बैठे हैं, और उनके साथ में एक स्त्री है और वो आनंद ले रहे हैं। अब इंद्र को देखकर वो रुके नहीं, तो इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने कहा ये सारा स्थान मेरे अधीन है, तुम हो कौन, जानते नहीं हो। तो उन्होंने चेहरा नहीं देखा था, तो जब इन्होंने ऐसा सुना जो व्यक्ति आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने घूमकर देखा और जैसे इंद्र की ओर देखा इंद्र पत्थर हो गए। वो थे शिव जी, इंद्र ने देखा नहीं और शिव जी को चुनौती दे दी, शिव जी ने केवल गुस्से में देख दिया, पत्थर हो गए। और उसके बाद बहुत लंबी कथा है, उसके बाद शिव जी ने खैर उन पर अनुग्रह किया, फिर से उनको कहा और कहा ये देखो एक गुफा है यहाँ पर, इसमें चले जाओ, तुम्हारे जैसे चार इंद्र पहले से बैठे हैं वहां पर, उन्होंने भी यही गलती की थी, अपमान किया था, अहंकार दिखलाया था, तो अहंकार नहीं होना चाहिए, जाओ उसको उस गुफा में जाओ देखो। तो इंद्र गए, उन्होंने गुफा का पत्थर उठाया तो चार इंद्र पहले से थे वहां पर, और ये चारों अब पांच हो गए, पूरे पांच इंद्र हो गए। तो उस समय इस इंद्र ने जो अभी आए थे उन्होंने पूछा शिव जी से क्षमा याचना की कि गलती हो गई, मैंने आपके प्रति अपराध कर दिया, तो अब आप बताइए कि ये सब क्या है। तो उस समय शिव जी ने कहा चिंता नहीं करो, तुम पांचों आगे चलकर बहुत बड़ा काम करने वाले हो। तो फिर उन पांचों इंद्र से उन्होंने प्रार्थना की शिव जी से कि हमें वायु के अंश के रूप में, यमराज के अंश के रूप में इत्यादि पृथ्वी पर प्रकट कीजिए। तो ऐसे ही पांचों प्रकट हुए। तो व्यास देव ने बताया कि ये साधारण नहीं है, अरुणा ने उस समय दिव्य दृष्टि दी, देखो उस दृश्य को देखो। तो उस समय उन्होंने देखा कि पांचों पांडव पांचों इंद्र के समान थे। जय श्री शिव जगन्नाथ प्रभु सुभद्रा मैया की जय, श्री शिव प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो उस समय उन्होंने देखा कि ये पांचों इंद्र के समान पांचों इंद्र हैं, और उस समय व्यासदेव ने द्रौपदी का भी एक इतिहास बताया। तो उन्होंने कहा वो जो स्त्री थी, वो जो लेकर गई थी, वो स्वर्ग लक्ष्मी थी। स्वर्ग लक्ष्मी अर्थात इंद्र की पत्नी को स्वर्ग लक्ष्मी कहा जाता है, शची देवी उनका नाम है। तो स्वर्ग लक्ष्मी थी, और वही स्त्री अब द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई है। और उन्होंने कहा एक और इतिहास बताता हूं द्रौपदी का, सुनो। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि पुत्री थी, और इन्होंने बहुत तपस्या की एक अच्छा पति पाने के लिए, सुंदर पति पाने के लिए, शक्तिशाली पति पाने के लिए। और जब शिव जी आए, शिव जी की तपस्या की, शिव जी प्रकट हुए, तो इन्होंने 5 बार शिव जी से मांग लिया, मुझे एक सुंदर पति दीजिए, मुझे एक शक्तिशाली पति दीजिए, मुझे एक बहुत गुणवान पति दीजिए, मुझे धर्मवान पति दीजिए। ऐसे मांग लिया 5 बार। शिव जी ने कहा तथास्तु, तुम्हारे 5 पति होंगे। उसने कहा अरे ये क्या, मैंने तो एक ही पति मांगा था। शिव जी ने कहा तुमने 5 बार मांगा, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे। देखिए भगवान से मांगने के समय थोड़ा संभाल कर मांगा करिए, कभी कभी भगवान ऐसी इच्छा पूरी कर देते हैं तो फिर कष्ट हो जाता है। द्रौपदी ने 5 बार उत्साह में मांग लिया तो 5 पति होंगे। तो इस तरह का इतिहास उन्होंने बताया और कहा चिंता नहीं करो, ये तो विधि का विधान है, तो लिखा जा चुका है और ये होना। तो उस समय द्रुपद ने कहा कि जब शिव जी की ये इच्छा है, शिव जी का वरदान है, तो मैं कौन होता हूँ इसको रोकने वाला, ये निश्चित धर्म है, तो इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, इन 5ों से विवाह होगा। तो फिर द्रौपदी का 5ों से विवाह हुआ। एक एक दिन पहले युधिष्ठिर से, फिर भीम से, फिर अर्जुन से, फिर नकुल और सहदेव, ऐसे 5ों से उसका विवाह हुआ, 5ों की पत्नी बनी। और उस समय श्री कृष्ण ने जब ये बात सुनी कि विवाह हो गया पांडवों का, तो श्री कृष्ण ने बहुत सारे उपहार भेजे, रत्न भेजे, घोड़े हाथी, बहुत सारे उनके लिए भेजे पांडवों के लिए उपहार। तो ऐसे विवाह हो गया। वैसे एक और प्रश्न आता है, क्योंकि हम लोग द्रौपदी की चर्चा कर रहे हैं, हमने सोचा कि थोड़े बाद में ये चर्चा करेंगे, लेकिन अब प्रसंग चल रहा है कि द्रौपदी ये 5 पतियों की पत्नी होते हुए भी सती कैसे है, चेस्ट वाइफ कैसे है? इसको श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में समझाते हैं। वो कहते हैं कि एक इतिहास वो भी बताते हैं मध्वाचार्य, वो कहते हैं कि एक बार देवताओं की पत्नियां, उन्होंने सोचा कि थोड़ा ब्रह्मा जी से हंसी मजाक करें, ब्रह्मा जी आए थे तो वे हंसी मजाक करना चाहती थी, तो 5 पत्नियां एक शरीर में प्रवेश कर गई। यमराज की पत्नी जिनका नाम श्यामला है, वायु की पत्नी जिनका नाम भारती है, इंद्र की पत्नी जिनका नाम शची है, स्वर्ग लक्ष्मी हम लोग कहते हैं, ऐसे ही 3 और 2 अश्विनी कुमारों की पत्नियां, ये 5ों ने एक शरीर धारण किया और जाकर थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने लगी ब्रह्मा जी से। कभी कभी देखिए देवताओं को अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी शक्ति का अहंकार हो जाता है, इसलिए वो भूल जाते हैं, मर्यादा का अतिक्रमण कर देते हैं। जैसे आप जानते हैं इंद्र, इतना अहंकार हो गया कि स्वयं कृष्ण से युद्ध करने लगे, जानते थे ये भगवान है। आप सोचिए कि जिस इंद्र ने थोड़े समय पहले जाकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि आप कृपा करके भौमासुर को मारिए, बड़ा उत्पात कर रखा है, मेरी माता के कुंडल ले गया है चुरा कर, इतना शक्तिशाली था, स्वर्ग में जाकर इंद्र की माता अदिति की कुंडल चुरा कर ले गया। बताइए इससे बड़े चोर कोई हो सकते हैं? आजकल के चोर क्या करते हैं, छोटी मोटी कहीं फिर भी पकड़े जाते हैं। ये तो भौमासुर इतना बड़ा चोर था, इंद्र की नगरी में जाकर इंद्र की ही माँ के कानों के कुंडल चुरा लाए। तो इंद्र ने आकर प्रार्थना की कि आप कृपा कीजिए, ये सब, ये इतना सब हो रहा है। तो उस समय भगवान गए थे और उन्होंने भौमासुर या नरकासुर उसका वध किया था, और उसके बाद वध करने के बाद सत्यभामा को लेकर स्वर्ग चले गए, क्योंकि सत्यभामा को एक पारिजात फूल चाहिए था। ये भी कथा बहुत सुंदर है कि एक बार एक पारिजात का फूल श्री कृष्ण को लाके नारद मुनि ने दिया और कहा कि रुक्मिणी देवी को दे दीजिए। कथा लंबी है संक्षेप में। तो भगवान ने वो दिया और नारद मुनि ने जाके सत्यभामा को बताया, कृष्ण तुमसे प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं करते। सत्यभामा ने, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रमाण चाहिए। हाँ देखो, रुक्मिणी को विशेष फूल दिया उन्होंने पारिजात, जो इस पृथ्वी पर नहीं मिलता, आपको दिया कभी? सत्यभामा ने कहा नहीं, देखो मैं कह रहा था नारद मुनि ऐसे काम बहुत करते हैं, इसीलिए उनका एक नाम है कलह प्रिय। नारद मुनि को कलह प्रिय कहते हैं कि जब तक वो कुछ करवा नहीं देते उनको प्रसाद हजम नहीं होता। वैसे नारद मुनि बहुत बड़े भक्त हैं, महान भक्त हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, लेकिन ये लीलाएं वो कृष्ण की लीला में रस को बढ़ाने के लिए करते हैं, किसी द्वेष से नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि इससे कृष्ण की लीला का रस बढ़ जाता है, तो सेवा के रूप में करते हैं। इसीलिए नारद मुनि को कभी गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। तो नारद मुनि ने जाकर कह दिया कि देखो, और सत्य भामा ने तो कहा मुझे तो वही चाहिए। अब कृष्ण ने कहा मैं तो रुक्मिणी को दे चुका हूं, नहीं मुझे वही चाहिए। तो इसीलिए कृष्ण ले गए थे सत्य भामा को और फिर वहां से स्वर्ग में ले गए। तो वही इंद्र जिसने अभी अभी कुछ समय पहले प्रार्थना की थी, स्वामी जी बचाइए, भगवान आप ही कर सकते हैं, तो भगवान गए, सत्य भामा को पसंद आया, भगवान ने पूछा अच्छा लगा वृक्ष, हाँ, भगवान ने उखाड़ लिया, चलो गरुण की पीठ पे रख, ले चलो इसको नीचे लगा लेंगे द्वारका में। तो जब ले जाने लगे तो इंद्र कहने लगा आप नहीं ले जा सकते। अरे कृष्ण ने कहा, क्योंकि भगवदगीता में कृष्ण क्या कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आता है। और ये कृष्ण भी जानते हैं और उन्हीं को, सॉरी इंद्र भी जानते हैं और उन्हीं को कह रहे हैं कृष्ण को लेके नहीं जाना। तो कृष्ण ने कहा देखो भाई, सत्य भामा की इच्छा है और मैं तो लेके जाऊंगा ही। तो इंद्र ने कहा नहीं, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण को हंसी आ गई। कृष्ण का ठीक है, युद्ध कर लो, हरा दिया। कुछ कितना समय लगा कृष्ण को हरा। तो ये देखिए कि देवताओं को भी अपने ऐश्वर्य का, अपनी संपत्ति का, अपने पद का अहंकार हो जाता है। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि अगर भगवान की कृपा से देवताओं को किससे मिलता है, ये पद इंद्र को किसने दिया, भगवान की कृपा से मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि जब मनवंतर बदलता है और उसमें इंद्र के पद के लिए, अन्य पदों के लिए किसी को चुनना होता है तो भगवान चुनते हैं, ठीक है आप आओ, आप इंद्र बनो, आप आओ, आप वरुण बनो, आप चंद्र बनो, भगवान चुनते, भगवान दे रहे हैं। और इतना अहंकार कि उन्हीं को चुनौती दे दी। तो इसीलिए हमारे लिए भी एक शिक्षा है कि हमें जानना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ है, चाहे धन हो, सौंदर्य हो, बल हो, यश हो, वैराग्य हो, ज्ञान हो, ये सब भगवान की कृपा है। और जब इस चीज को हम भूल जाते हैं तो हम भगवान का विरोध करने लगते हैं, हम भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम भगवान से प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा करते हैं, खुद भगवान बनने की इच्छा करते हैं। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। भगवान कहते हैं भगवद गीता में असुरों का क्या भाव है, ईश्वरो हम, मैं ईश्वर हूं, ईश्वर यानी मैं नियंता हूं, मैं नियंत्रण करने वाला हूं। ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं भोगता हूं, सब चीज मेरे भोग के लिए बनी है, सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, धन मेरे लिए, अच्छा भोजन मेरे लिए, सुंदर स्त्री मेरे लिए। ईश्वर हम अहम भोगी सिद्धो हम, मैंने सब कुछ सिद्धि प्राप्त की है अपने बल पर, सिद्धो हम बलवान, मुझसे बलवान कोई और है ही नहीं, सुखी और मैं सुखी। ये मोह है। हमारी क्या स्थिति है, क्या हम ईश्वर हैं, क्या हम नियंत्रक हैं? अगर हम नियंत्रक होते तो अपने शरीर को तो कम से कम नियंत्रित कर पाते हैं। शरीर बढ़ता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, बीमारियां आती हैं, कष्ट आते हैं, क्या नियंत्रण कर लेते हैं हम, है कोई जो रोक सकता है? हाँ, वो बाल सफेद करना और वो कुछ आजकल वो लोग कुछ प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, फेस लिफ्टिंग और पता नहीं क्या क्या, बुढ़ापा नहीं जाता उससे। बाल सफेद कर लेना, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेना, कानों में चुप सुनाई नहीं देता तो कुछ अंदर वो मशीन लगवा लेना, उन सबसे कोई बुढ़ापा नहीं जाता, ये दिखावा है। तो क्या नियंत्रण है, नियंत्रक नहीं है, इसलिए ईश्वर नहीं है हम लोग, दास हैं, अपनी इंद्रियों के दास हैं, अपनी इच्छाओं के दास हैं। इस भौतिक जगत में ये जो भगवान की भिन्ना प्रकृति है, भगवान की अंतरंगा नहीं बहिरंगा शक्ति है, उसके दास है। इसीलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए ईश्वरो हम, हमें कहना चाहिए दासो हम। हम तो दास हैं। ईश्वरो हम अहम भोगी, फिर व्यक्ति कहता मैं भोगी हूं। भोगी नहीं है इस जगत में, क्या है? रोगी। सारा रोग लगा हुआ है हम सबको, भव रोग तो है ही, बाकी बहुत सारे रोग हैं। कुछ चीजें पा लेने का रोग है, बस इस जगत में सुखी रहना है, इत्यादि इत्यादि। तो इसीलिए ईश्वरो हम नहीं दासो हम, भोगी नहीं रोगी। तो ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम। क्या सिद्धि है हमारे पास बताइए? बद्ध है, बद्ध सिद्ध नहीं है, बंधे हुए हैं। इस जगत में बंधा बांध कर रखा है हमें, तीन गुणों ने बांध दिया है और हम उनके अधीन कार्य करते हैं, जानते भी नहीं है। एक बहुत सुंदर चित्र हमने सबसे पहली बार जब तीन गुणों का वर्णन हो रहा था तब हमने पहली बार वो चित्र देखा था, आज भी हमारे मन में है कि एक व्यक्ति की ऐसे उंगलियां हैं और उसमें से रस्सियां बंधी हैं और नीचे लकड़ी की गुड़िया है जिसे कठपुतली कहते हैं और वो ऐसे घुमा रहा है हाथ और वो नाच रही है। तो वो गुड़िया सोच रही है मैं नाच रहा हूं, लोग सोच रहे हैं कि ये नाच रही है, लेकिन नचाने वाला दिखाई नहीं दे रहा। ये तीन गुण है प्रकृति के, इसे केवल नचाते हैं। आज हमारा हमें याद घूम रहा है, ये हमारी शक्ति नहीं है, नाचा है। तो ये तीन गुण, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये नचा रहे हैं हमें, सारे कार्य करा रहे हैं हमसे। इसीलिए देखिए कभी कभी आपको बड़ा अच्छा लगता है, मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में प्रणाम करना चाहिए, सब अच्छा है। फिर कभी कभी नहीं, धन कमाना चाहिए, ये सब तो बाद में, पहले धन कमाओ, कुछ बनाओ, कुछ बनकर दिखाओ। और फिर कभी तमोगुण, सारे गलत काम करिए। तो सारे गुणों से हम प्रभावित हैं, दिन भी हमारा इन गुणों के अधीन है। रात्रि का समय तमोगुण का होता है इसीलिए व्यक्ति सोता है, दिन का समय रजोगुण का होता है इसीलिए व्यक्ति कार्य करता है, और सुबह का समय सत्वगुण का होता है जिसमें भक्ति के कार्य करने चाहिए। आजकल तो लोग सुबह सुबह भी टीवी लगा लेते हैं, कोई भक्ति नहीं होती है। हमने देखा है सुबह उठते ही टीवी चालू हो जाता है। आजकल तो भगवान टीवी है, आरती टीवी की होती है, कौन सा सीरियल आ रहा है कौन सा, ये बच्चों को सब पता होता है। उनको भगवत गीता के श्लोक पूछिए, एक श्लोक नहीं पता होगा, लेकिन कौन से दिन कौन सा सीरियल आता है बच्चे आपसे अच्छा उसको बता देते हैं लाइन से, और ये भी बता देते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। हमें एक बार एक बच्चे ने बताया था, हमें तो सीरियल के नाम भी नहीं पता थे, और उसने बताया ये सीरियल होता है इसमें ऐसा होता है। हम एक बार कहीं गए थे तो उसमें हमारे साथ में एक परिवार गए थे, तो उन परिवार में एक महिला थी, तो एक बच्चा बोलने लगा, पता नहीं कोई सीरियल का नाम ले रहा था, कि आप ना वो सीरियल में वो जो वो है वैसी दिखती है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखिए छोटा बच्चा, तो गलती हमारी है, सुबह सुबह 6 बजे, 6 बजे तो उठते नहीं, खैर आप जो भी समय उठते ही टीवी शुरू हो जाता है, रात तक चलता रहता है। और आजकल तो इतना हो गया है कि एक एक घर में 2 टीवी 3 टीवी 4 टीवी है, हर एक बेडरूम में टीवी है, बच्चा कुछ और देख रहा है, माँ कुछ और देख रही है, पिता कुछ और देख रहा है, गेस्ट कुछ और देख रहा है। सारा जो साथ में बैठने का, प्रेम से रहना, प्रेम से परिवार को बनाए रखना, वो सब टूट गया है। सच बता रहे, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो एडवांसमेंट हम कह रहे हैं, सब तोड़ रहे हैं परिवार को। हम आपको उदाहरण देते, पहले हम ट्रेन में जाया करते थे तो हम देखते थे कि कोई परिवार होते थे, पति पत्नी बच्चे, बहुत आराम से वो लोग बातें करते थे, बहुत ज्यादा, कभी कभी हमें तंग हो जाते थे कितनी बातें करते हैं लोग, क्योंकि ट्रेन में लोग कुछ ही चीजें करते हैं, या तो बहुत बात करते हैं, या बहुत सोते हैं, या फिर खाते हैं, कि चौथा कोई काम हमने देखा नहीं। हाँ, ट्रेन में जो आया वो बेचने वाला, हाँ रुको दूसरा कोई, हाँ रुको वही चलता, क्योंकि कुछ करने के लिए नहीं है, चलो खाते रहे खाते रहे। हाँ, आप लोगों का भी अनुभव होगा ऐसा, और इसीलिए ट्रेन में बेचने वाले आते रहते रात तक, सोने का समय हो जाता है वो आते रहते, और सुबह सुबह शुरू हो जाए चाय 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 चाय। जो आया वो तो पहले कम से कम बातचीत करते थे, कुछ घरों की बातें होती थी, कुछ इधर उधर की चलता रहता था, कोई वो पति पत्नी बात करते थे, किसी के घर की निंदा करते थे, किसी जो भी है करते तो थे। आजकल क्या है, आजकल हम देखते हैं पति पत्नी बच्चा तीनों अपना अपना मोबाइल लेकर बैठे, पता ही नहीं चलता कि एक परिवार के हैं। वो तो जब टीसी आता है तब मालूम पड़ता है कि अरे एक परिवार के बीबी टिकट एक है उनका, नहीं तो ठीक है बैठे हैं हम लोग। और लेकिन एक अच्छी चीज है, शांति बहुत रहती है, क्योंकि वो लोग अपने कान में लगा के कोई मूवी देखता है, कोई कुछ करता है, फोन पे शांति रहती है। लेकिन घर टूट रहा है, पत्नी अपने फोन पे लगी हुई है, उसको कुछ मतलब नहीं, पति उधर है वो अपने पे लगा हुआ है। और बच्चा भी आजकल छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं, लोग गर्व मानते हैं। एक बार एक व्यक्ति बता दे, प्रभु जी इसमें मुझे नहीं मालूम वो कैसे डाला जाता है, कोड वोड मेरा छोटा सा बच्चा डाल लेता है। मुझे शर्म आनी चाहिए आपको गर्व हो रहा है, इतने छोटे से बच्चे को आपने ये सब सिखा दिया, बड़ा होकर क्या बनेगा, उसको इसकी आदत पड़ जाएगी। तो इस जैसे पहले भी होता था, लोग पहले के जमाने में 20 साल पहले 50 साल पहले जब बच्चा पाठशाला जाता था, वापस आता था, कोई श्लोक सुनाता था, माता पिता उसको खड़ा करते थे, बेंच पर खड़े हो जाओ श्लोक सुना, और बच्चा श्लोक सुनाता था माता पिता का। फिर धीरे धीरे समय बदला, तो ABCD बोलने लगा, तो वो आके गलत भी बोलता था तो माता पिता ताली बजाते थे। फिर समय बदल गया, बच्चा आके फिल्मों के गाने गाने लगा, माता पिता देखिए मेरा बच्चा एकदम शाहरुख खान की तरह गाता है, पता नहीं शाहरुख खान जो भी उसकी तरह गाता है, लोगों को बड़ा गर्व होने लग गया। सब भगवत गीता भूल गए, कभी कोई ये नहीं कहता है कि मेरा बेटा देखो अर्जुन की तरह श्लोक बोल रहा है भगवत गीता का, बताइए कोई कहता है, आपने सुना, कोई नहीं, इसकी तरह गाता है उसकी तरह नाचता है, वो सब चलता है क्योंकि स्कूल में यही सिखाया गया है। तो अब वो आ गया है तो परिवार टूट रहे हैं, कोई संबंध नहीं। अभी अगर ऊपर अगर घर में पत्नी है, नीचे पति खड़ा है, लेट हो रहा है तो फोन करता है तो जल्दी आओ, पहले ऐसा नहीं था, संबंध था, अभी सब टूट गया। और टीवी ने तो सबसे बड़ा नुकसान किया है, 700-800 साल के मुगल राज्य ने जितना नुकसान नहीं किया, 200 वर्ष के अंग्रेजों के राज्य ने जितना नुकसान नहीं किया, 20 वर्ष के MTV जी टीवी ने कर दिया। सही, क्या क्या नहीं दिखाते हैं आजकल, तो केवल इतना बहुत, अब ज्यादा नहीं कहेंगे, आप लोगों के तो आराध्य देव हैं, टीवी ओम टीवी आए नमः वगैरह सुबह सुबह आप लोग करते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं कहेंगे। बस इतना कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा भविष्य हो संतान का, तो उसको टीवी से दूर रखिए। क्योंकि एक सर्वे किया गया था और उसमें बताया कि जब तक बच्चा 10वीं पास करता है तो कम से कम 10,000 मर्डर देख चुका होता है टीवी पर, 20,000 हिंसा की घटनाएं देख चुका होता है, और फिर अलग अलग चीजें रेप और ये वो बहुत कुछ देख चुका होता है। तो इसलिए उसको किसी का खून करने में दुख नहीं होता, छोटा सा बच्चा गोली लेके मार देता है। तो इसीलिए बहुत संभालिए, अगर अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देना है तो इस एक कलयुग के असुर से उसको दूर रखिए, नहीं तो आगे चलकर यही यही बच्चा आपको दोष देगा, आपकी निंदा करेगा, और तब आप पूछेंगे मेरा बच्चा ऐसे कैसे निकल गया, तब आपको याद नहीं रहेगा कि जब आपको काम करना होता था बच्चा परेशान करता था, आप उसको सीरियल ऑन करके बिठा देते थे, बेटा देखो ये चिंता तंग नहीं करना, सीरियल अच्छा है ना, हाँ देखो। तो आजकल हम लोग संतानें संस्कारों की संतानें नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, सीरियल बेबीज उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे हमने कई बार घटना सुनाई है कि अमेरिका में महिला थी जो जब गर्भवती थी तो उसको एक विशेष सीरियल बहुत पसंद था, बहुत देखा करती थी, गर्भवती थी गर्भ में बच्चा था, तो जब बच्चा उत्पन्न हुआ तो बच्चा बहुत रोता था लेकिन एक ही बार चुप होता था जब वो सीरियल आता था, बच्चे को कुछ पता नहीं था लेकिन वो सीरियल चलते ही वो चुप हो जाता था, क्योंकि माँ ने 9 महीना गर्भ में उसको वही सीरियल दिखाया था। इसीलिए सीरियल बेबीज उत्पन्न ना करें हम लोग, संस्कार वाले संतानों को उत्पन्न करें। खैर क्षमा चाहते, थोड़ा सा विषय से अलग चले गए, लेकिन हम लोग धर्म की बात कर रहे थे। तो द्रुपद महाराज को ये सब दिखला दिया, विवाह हो गए, भगवान ने भी बहुत उपहार दे दे। विवाह पूर्ण हो गया द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ, और अब ये सूचना दुर्योधन को मिली। अभी तक उसे पता नहीं था पांडव जीवित हैं। जब पांडव आए थे तो ये लोग द्रौपदी को देखने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया पांचों की ओर। केवल एक व्यक्ति ने ध्यान दिया था, किसने? कृष्ण ने। और उन्होंने बलराम जी को दिखाया था, वो देखो अर्जुन, वो देखो भीम, वो युधिष्ठिर। तो अब जब ये सब हो गया, विवाह हो गया, खैर हम लोग चर्चा द्रौपदी की पूरी नहीं हुई थी शायद ना, पांच अंशों की। तो पांचों ने एक शरीर में आके ब्रह्मा जी के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ कर दिया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुमको बहुत शौक है, तुम सबको पांच पुरुषों, तुमको अलग अलग पुरुषों के साथ संग करना होगा। तो बड़ा दुखी हो गए। तो खैर यही पांचों अंश, पांच देवताओं के पांच जो पत्नियां हैं उनके अंश द्रौपदी में आए थे। तो मध्वाचार्य जी समझाते हैं कि जिस समय द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ होती थी तो फिर धर्मराज की अंश, धर्मराज की पत्नी यानी श्यामला की अंश, धर्मराज के अंश के साथ संग कर रही थी। तो उसमें क्या गलती है? धर्मराज की पत्नी धर्मराज के साथ है। जब भीम के साथ होती थी तो फिर जो भारती देवी अर्थात जो वायु की पत्नी है उनके अंश वायु के अंश के साथ संग करते थे। तो फिर इसमें भी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो पत्नी पति के साथ है, उसमें क्या दोष है? तो इस तरह से उन्होंने समझाया कि द्रौपदी भले ही पांच पतियों की एक पत्नी थी लेकिन वे पांचों के अंश मिले होने के कारण उसमें कोई दोष नहीं था। तो अब दुर्योधन को पता चला, और दुर्योधन और कर्ण, आप सोचिए कि जब पता चला तो क्या हुआ होगा, कितना धुआं निकला होगा, क्या क्या स्थिति हुई होगी। और विदुर ने जाकर धृतराष्ट्र को सूचना दी। अब तो सबको पता चल गया, तो अब विदुर भी जाकर सूचना दे रहे हैं, विवाह हो गया। अब बताइए कौरव कुरु वंश के वो राजकुमार है, उनका विवाह हो गया और यहाँ राजा को पता ही नहीं। तो फिर विदुर ने जाकर, अच्छा धृतराष्ट्र को ये पता था कि दुर्योधन इत्यादि गए हैं द्रौपदी से विवाह करने के लिए, तो विदुर भी जानते थे। तो विदुर ने आके बड़े अच्छी तरीके से बताया। विदुर ने ये नहीं कहा कि महाराज पांडव जीवित हैं, उन्होंने कहा महाराज कुरु वंश का विस्तार हो रहा है, नए संबंध जुड़ गए हैं, अब विस्तार हो रहा है, बहुत से राजाओं से संबंध जुड़ेगा। स्वाभाविक है ना, द्रुपद से जुड़ा, फिर द्रुपद के जितने अधीन राजा हैं उनसे जुड़ गया, अब सब वो इनके कुरु वंश के संबंधी हो गए। तो बहुत प्रसन्न हो गए धृतराष्ट्र, और उन्होंने कहा सारे महल को सजाओ, देश को सजाओ और फूलों की वर्षा करो, और बुलाओ जब ये दुर्योधन और द्रौपदी आए तो उनका बड़ा स्वागत करो। उसने स्वीकार कर लिया कि दुर्योधन ने जीत लिया है द्रौपदी को। तो उस समय विदुर ने कहा नहीं नहीं महाराज थोड़ी गलती हो गई। तो क्या हुआ? अरे तुमने ही तो कहा संबंध बढ़ गए। महाराज संबंध तो बड़े हैं लेकिन विवाह पांडवों से हुआ है द्रौपदी का। और ये सुनते ही उसके तो गले, उसके कान में जैसे गरम गरम लोहा डाल दिया हो किसी ने, पांडव जीवित हैं लेकिन अब दिखा नहीं सकता। तो उसने कहा अच्छा बड़े भाग्य की बात है, ये तो इतना बड़ा भाग्य है कि पांडव जीवित हैं, उससे भी बड़े भाग्य की बात कि द्रुपद से उनका संबंध हो गया, बहुत अच्छा है, जल्दी से उनके स्वागत की तैयारी करो इत्यादि इत्यादि। तो विदुर चले गए। अब ये बात दुर्योधन और कर्ण ने सुन ली कि इतना खुश हो गए धृतराष्ट्र। तो फिर वो आए और कहने लगे आप हमारे पिता नहीं है ऐसा लगता है। दुर्योधन ने कहा क्यों, क्या हुआ? अरे आप शत्रु के जीवित होने पर इतना उत्सव मना रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, हमें तो पता नहीं चल रहा क्या करें। तो उस समय धृतराष्ट्र ने कहा कि देखो विदुर, ये बहुत निकट का है पांडवों के, अगर मैं उसके सामने ऐसा नहीं करता तो उसको शंका हो जाती, इसीलिए मुझे करना पड़ा। अब बताओ क्या करना है। तो दुर्योधन ने कहा कि देखिए पांडव जीवित हैं, अब तो पता चला है, अब कुछ तो उपाय करना चाहिए उनको मारने का। एक काम करते हैं, उसने बहुत सारी योजनाएं बताई। देखिए व्यक्ति का जो दिमाग होता है कैसे कैसे, जब दिमाग में द्वेष उत्पन्न हो जाता है तो क्या क्या वो सोचता है, तो दुर्योधन ने कई योजनाएं प्रकट कर दी युधिष्ठिर के सामने, धृतराष्ट्र के सामने, और उन्होंने कहा कि देखिए एक काम करते हैं, ये जो भाई हैं, पांचों भाई हैं, इनमें फूट डलवा देते हैं, इन पांचों में बहुत एक साथ रहते हैं, इनमें फूट डलवा देते हैं। अब तो एक ही पत्नी है तो किसी को भेजकर गलत गलत बातें कर फूट डलवा देते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, किसी बड़े शक्तिशाली लोगों को भेजकर धोखे से भीम का वध करवा देते हैं। भीम मर गया तो ये लोग सब अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि भीम की शक्ति पे ही ये लोग युद्ध कर सकते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, एक ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मणों को भेजिए और उनको कहिए कि आप वहीं रहिए, पांडवों कहेंगे वहीं द्रुपद राज्य में रहो सुखी, तो वो वहां सुखी रहेंगे, हम यहाँ सुखी रहेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, सबको बुलाइए और धोखे से मार डालते हैं सबको। देखिए क्या क्या दुर्योधन के मन से क्या क्या निकल रहा था ना, मतलब कोई उसको लिखने की सोचने की बात नहीं, तरह तुरंत निकलते जा रहा है, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मार दीजिए, बस किसी तरह समाप्त कीजिए। तो कर्ण वहां बैठे थे और कर्ण ने कहा कि दुर्योधन ये सब संभव नहीं है, तुमने बचपन से प्रयास कर लिया ना उनको मारने का, आज तक तो मार नहीं पाया, विष दिया जला कर मारा, क्या क्या नहीं किया तुमने, आज तक तो मार नहीं पाया, तो ये निश्चित है कि मार नहीं सकते हैं हम लोगों ने, तो एक काम करो युद्ध करो, अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करो, मैं हूं ना, चिंता नहीं करो। देखिए कर्ण कितनी बार हार चुका है दुर्योधन से पहले, आप लोगों ने सुना है ना, मैंने कई प्रसंग बताए जहां कर्ण हार गया लेकिन अर्जुन जीत गए। कह रहे युद्ध करो, क्षत्रिय हो, युद्ध में उनको जीतेंगे हम लोग, क्यों चिंता करते हो। तो धृतराष्ट्र ने पूछा, धृतराष्ट्र ने कहा देखो ये सब करने से पहले भीष्म और द्रोणाचार्य से सलाह लो, क्योंकि अगर कल को युद्ध करने जाओगे तो वो लोग भी तो है ना, उनकी अनुमति होनी चाहिए। तो भीष्म और द्रोण और विदुर सबको बुलाया गया, तो क्या करना चाहिए। तो भीष्म ने कहा कि देखो जैसे मेरे लिए पांडव है वैसे ही कौरव, मैं अन्याय नहीं कर सकता उनके साथ, इसीलिए मैं एक सुझाव देता हूँ, इसको मान लो। उन्होंने कहा दुर्योधन से कि जब से ये लाक्षाग्रह का कांड हुआ है, पुरोचन को तो लोग गाली देते ही हैं, गलत बात कहते ही हैं, तो उसने दुष्कर्म किया, लेकिन तुम्हें भी दोष दे रहे हैं सब, सारी प्रजा तुम्हें दोष दे रही है कि तुमने पुरोचन को भेजकर पांडवों को जलाकर मार डाला, तो अब पांडवों के साथ अच्छा करके तुम अपनी जो स्थिति है उसको अच्छा कर सकते हो, इसीलिए मेरा सुझाव यह है कि आधा राज्य पांडवों को दो, आधा राज्य तुम लोग, बस। तो जब द्रोणाचार्य ने ये सुना तो उन्होंने कहा सबसे अच्छी बात भीष्म ने कही, हमें अभी यहाँ से लोगों को भेजना चाहिए, बड़े सारे उपहार भेजने चाहिए पांडवों के लिए, और उनको बड़ी विनम्रता से बुलाना चाहिए और आधा राज्य उनको दे देना चाहिए, इसीलिए सबकी भलाई है, नहीं तो अर्जुन भीम युधिष्ठिर ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सब नाश हो जाएगा, इसीलिए इस कार्य को करो। तो कर्ण ने स्वीकार नहीं किया, कर्ण को बड़ा गुस्सा आ गया, वो तो कहने लगा कि ये सब जो तुम्हारे द्रोणाचार्य भीष्म ये है ना, हृदय में तुम्हारे शत्रुओं से प्रेम करते हैं, इसीलिए ऐसे गलत उपाय दे रहे हैं, कि उनको बुलाओ आधा राज्य कर दो। तो उस समय द्रोणाचार्य ने बहुत डांटा कर्ण को, तुम समझते नहीं हो तुम क्या कह रहे हो, हम लोग कोई कायर नहीं है, हम युद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि युद्ध करके कोई उपाय नहीं, लाभ नहीं, इसीलिए इसी बात को करो। तो अंत में धृतराष्ट्र ने स्वीकार किया कि ठीक है आधा राज्य उनको देंगे। विदुर से कहा कि आप ही जाइए, क्योंकि आप सबके प्रिय हैं, तो आप जाइए और द्रुपद महाराज से आज्ञा लेकर पांचों पांडवों को लेकर आइए, और फिर हम उनको यहाँ पर आधा राज्य दे देंगे। तो ऐसी जब चर्चा हो गई तो उस समय फिर विदुर को निश्चित किया कि आप पांडवों के पास जाइए। तो जब विदुर पहुंचे वहां पांडवों के पास, ये भी बड़ा सुंदर प्रसंग है कि पांडवों के पास तो चले जाएंगे और उनको लेकर आना है, तो वहां कृष्ण भी थे, कृष्ण और बलराम भी आए हुए थे। तो उस समय पांचों पांडवों ने बड़ा स्वागत किया विदुर का, विदुर ने सबको मान सम्मान दिया और फिर उन्होंने संदेश दिया धृतराष्ट्र का द्रुपद महाराज को कि इन पांचों पांडवों को अब बहुत सारे उपहार भेजे थे उनके लिए, तो अब वापस अपने राज्य में बुलाया है तो आपकी क्या अनुमति। तो उन्होंने कहा मुझे कोई नहीं, अगर ये लोग जाना चाहें तो इनकी इनकी इच्छा। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, हम तो आपके अधीन हैं, आप जैसा आज्ञा देंगे, अगर आप कहेंगे जाना है तो चले जाएंगे, आप कहेंगे यहाँ रहो तो यहाँ रहेंगे। तो उस समय द्रुपद महाराज ने कहा कि जो कृष्ण कहेंगे वो होगा। देखिए द्रुपद से बहुत छोटे हैं कृष्ण, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा क्योंकि जो कृष्ण कहेंगे वो होगा। तो कृष्ण का क्या कहना है? तो कृष्ण ने कहा कि मेरा मत तो ये है कि पांडवों को जाना चाहिए, और फिर भी आपकी जो इच्छा हो, लेकिन मेरा मत यह है कि पांडवों को जाना चाहिए। तो उस समय फिर निश्चय हो गया कि पांडव जाएंगे, और उस समय दहेज दिया द्रुपद महाराज ने। देखिए राजा क्या होते थे, राजा ये केवल दहेज सुनकर पता चल जाता है क्या दहेज दिया, आजकल तो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने 1000 हाथी, ये शुरुआत है खत्म नहीं, 1000 हाथी जिनके ऊपर जो हौदा लगा होता हाथी पे बैठने का वो सोने का था और उसका अंकुश भी सोने का, ऐसे 1000 हाथी दिए। आजकल तो शादी में कोई 1 हाथी भी नहीं दे सकता, और देगा भी तो कोई लेगा भी नहीं, सही है ना। चलो अगर किसी ने बड़ी मेहनत करके कहीं से 1 हाथी ला के भी दे दिया तो वो जो बेचारा दूल्हा है वो तो बोलेगा नहीं नहीं आपकी पुत्री आपके पास रखो हाथी, क्योंकि उसको खिलाना बड़ा मुश्किल होता है हाथी को। सही में हाथी खरीदना मुश्किल नहीं है, हमने कई बार आपको सुनाया। एक बार बेलगाम में हम लोग एक उत्सव कर रहे थे तो हम लोगों की बड़ी इच्छा हुई हाथी लाना चाहिए, क्योंकि उत्सवों में होते थे हाथी, तो हम लोग हाथी ले आए। किसी को फोन किया वहां से उसने कहा हमने सोचा कितना खर्चा होगा, कुछ नहीं बस इतना दे दीजिएगा डोनेशन और जो भी हाथी के खाने का है। हमने कहा वो खाने का चिंता नहीं, वहाँ पर किचन है, आप आ जाइए, आपको डोनेशन भी दे देंगे और हाथी को खिला भी देंगे। 3 दिन था हाथी वहाँ पर, और उसके बाद हम लोगों ने कान पकड़ लिया अगली बार हाथी नहीं बुलाएंगे कभी। क्यों? क्योंकि हम लोग लाए थे, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 2000 लोग उत्सव में आएंगे रोज शाम को, तो 5 दिन का 7 दिन का उत्सव था, तो हम लोगों ने उसके लिए लाकर राशन रखा था 2000 लोगों के लिए। और अगले दिन ही किचन वालों ने आकर हमसे कहा मुझे राशन खत्म हो गया। मैंने कहा राशन खत्म हो गया, 7 दिन के लिए लाए थे, क्या हुआ? हाथी खा लो, हाथी खा। हम लोगों ने सोचा था अरे राइस मतलब इतना सा राइस दे देंगे, अब वो तो पूरी बोरी की बोरी उसके पास जा रही है और उसका पेट ही भर रहा। तो इसलिए हाथी पालना भी बड़ा मुश्किल है और संभालना। तो 1000 हाथी दिए उन्होंने, और फिर 1000 रथ दिए जिसमें हर एक रथ में 4-4 घोड़े थे, 1000 रथ, और वो भी सब रत्न जड़ित। और फिर 50,000 घोड़े दिए। ये दहेज है, देखिए आप लोग याद रखिए ये सब चीजें, क्या दहेज मिलता था राजाओं का। 50,000 घोड़े दिए, और फिर 10,000 उन्होंने दासियां दी सेवा करने के लिए द्रौपदी की। 1000 सेवक दिए, ऐसे सेवक जो सब धनुष बाण चलाना जानते थे, मतलब अगर युद्ध हो तो वो लोग युद्ध कर सके। 1000 सेवक दिए, ये दहेज था। उसके बाद महाभारत में वर्णन है कि जो कपड़े और शैयाएं, सोने की शैयाएं या काली, ये करोड़ों की संख्या में दिए गए, उसकी कोई संख्या नहीं, करोड़ों। तो इतने सारा दहेज साथ में दिया उन्होंने, और इस सब को लेकर के पांडव हस्तिनापुर में आए। और फिर हस्तिनापुर में आने के बाद भी बहुत सुंदर प्रसंग है। हस्तिनापुर में आने के बाद क्या हुआ? दूसरी चीज, एक प्रश्न किया था कि पांडव एक पत्नी के साथ रह रहे थे, उनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ क्या, कुछ मतभेद हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इसके लिए कुछ नियम बनाए थे, क्या नियम थे और क्यों बनाए, किसने कहा, ये सब वर्णन हम लोग अगले सोमवार को सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप में से किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं तो हाथ ऊपर कीजिए, माइक आप।